40वें पद का गुप्त इतिहास संख्या 16 दूसरा हाय भाग 3
जोन्स का तर्क।
जोन्स का ये तर्क कि प्रकाशित वाक्य 14 का पहला स्वर्गदूत उसके बाद आने वाले दो स्वर्गदूतों से पृथक नहीं किया जा सकता, चट्टान के समान दृढ़ है। उन तीन स्वर्गदूतों के संरचनात्मक संबंध को तुरही बजाने वाले स्वर्गदूतों के साथ उसकी पहचान सर्वथा अभेद्य है। निस्संदेह उसका विशेष बल प्रकाशित वाक्य 14 के उन तीन स्वर्गदूतों पर था, परंतु उन्हें अविभाज्य के रूप में लागू करने का तर्क उनसे पहले आए सभी स्वर्गदूतों पर भी उतना ही वैध है,
क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य 14 के तीन स्वर्गदूतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने अपने ही तर्क को उसके अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया।
अंततः जिस तर्क का उसने उपयोग 5वीं, 6ठी और 7वीं हाय की तुरहियों को प्रकाशित वाक्य 14 के तीन स्वर्ग दूतों से जोड़ने के लिए किया, उसमें तुरहियों की श्रेणी को 7 तुरही बजाने वाले स्वर्ग दूतों में से प्रथम तक पूरी तरह पीछे ले जाना भी सम्मिलित था।
और मैंने उन 7 स्वर्ग दूतों को देखा जो परमेश्वर के सम्मुख खड़े थे, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं, और वे 7 स्वर्ग दूत जिनके पास वे 7 तुरहियां थीं फूंकने के लिए तैयार हुए। प्रकाशित वाक्य 8:2-6।
स्वर्ग दूतों की श्रृंखला 7 तुरही बजाने वाले स्वर्ग दूतों से आरंभ होती है, और प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग दूतों की पंक्ति पहली तुरही से लेकर पशु की छाप के विषय में तीसरे स्वर्ग दूत की चेतावनी तक जाती है। पहली 4 तुरहियों और अंतिम 3 हाय की तुरहियों के बीच भेद को पहचानने में जोन्स सही हैं, क्योंकि 4 और 3 की वो भविष्य सूचक संरचना कलीसियाओं और मुहरों में भी पाई जाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 गवाहों पर स्थापित ये बात उन लोगों को जो देखना चुनते हैं ये समझने देती है कि 7 एक प्रतीक के रूप में, 4 को भी एक प्रतीक के रूप में और 3 को भी एक प्रतीक के रूप में समाहित करता है। एक दैवीय संबंध। हाल के समय में हम जिस बात की पहचान करते आए हैं वो ये है कि प्रकाशित वाक्य 14 के प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूत इस्लाम से संबंधित प्रथम और द्वितीय हाय की एक समय भविष्यवाणी द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और तृतीय स्वर्गदूत का सामर्थ्य प्रदान 9 मिथको 11 को तृतीय हाय की पूर्ति के द्वारा संपन्न होता है। जो बात जन्स के अनुप्रयोग से पहचानी जाती है, यद्यपि उसने मेरा बिंदु नहीं रखा, वो ये है कि प्रकाशित वाक्य 8 के प्रथम तुरही स्वर्गदूत से लेकर प्रकाशित वाक्य 11 की तृतीय हाय की तुरही तक प्रत्येक स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 14 के तीनों स्वर्गदूतों के साथ अविच्छेद्य रूप से जुड़ा हुआ है। वे उसी भविष्यद्वाणी रेखा के भीतर प्रतीक हैं। प्रत्येक स्वर्गदूत जिन विभिन्न भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है उन्हें समझने के लिए उन्हें इसी प्रकार पहचानना आवश्यक है। इसलिए जिस प्रकार 7 कलीसियाएं, मुहरें और तुरहिया 7 का प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ ही 7 की समग्र प्रतीकात्मकता कलीसियाओं, मुहरों और तुरहियों के भीतर 4 और 3 के प्रतीक को भी, उसी प्रकार 7 तुरही स्वर्गदूतों में से प्रथम से लेकर तृतीय स्वर्गदूत तक की स्वर्गदूतों की रेखा को एक समग्र इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। इससे 11 स्वर्गदूतों की एक रेखा की पहचान होती है। प्रकाशित वाक्य 14 के 3 स्वर्गदूत मिलेराइटों के उस चेतावनी संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने न्याय के आरंभ की घोषणा की, और उसके पश्चात 1,44,000 के उस चेतावनी संदेश का जो न्याय के समापन की घोषणा कर रहा है। 7 तुरहियां उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी दैवी व्यवस्था के अनुसार उन राष्ट्रों पर न्याय लाने के लिए प्रयोग किया जिन्होंने सूर्य पूजा को लागू किया था। पहली 4 तुरहियां सन 422 तक पश्चिमी रोम के क्रमिक पतन की पहचान कराती है। 5वां और 6ठा 1479 से 1353 तक पूर्वी रोम के पतन को चिह्नित करते हैं। अंतिम 3 नरसिंगे 3 हायों के इस्लाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकाशित वाक्य 10 का स्वर्गदूत मसीह है जो आरंभ में उस आंदोलन को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए उतरता है, और वही प्रकाशित वाक्य 18 में फिर उतरता है ताकि अंत में उस आंदोलन को सामर्थ्य प्रदान करे। प्रायश्चित्त के प्रतिरूपात्मक दिन ठहरने वाले न्याय के आरंभ पर 22 अक्टूबर 1844 को 7वीं तुरही बजनी आरंभ हुई। जुबली की तुरही प्रायश्चित्त के दिन बजाई जानी थी, इसलिए न्याय के समय 2 तुरहियां बजाई जाती हैं, जुबली की तुरही और 7वीं तुरही।
तब तू 7वें महीने के 10वें दिन अर्थात प्रायश्चित के दिन जुबली का नरसिंगा फूंकवाना, तुम अपने सारे देश में नरसिंगा फूंकवाना, और तुम 50वें वर्ष को पवित्र ठहराना, और उसके सब निवासियों के लिए सारे देश में स्वतंत्रता का प्रचार करना, वो तुम्हारे लिए जुबली होगा, और तुम में से प्रत्येक मनुष्य अपनी निज भूमि में लौटे, और तुम में से प्रत्येक मनुष्य अपने कुल में लौटे, वो 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जुबली होगा, उसमें न तो बोना और न जो अपने आप उग आए उसे काटना, और न अपनी बिना छंटी हुई दाखलता के अंगूर बटोरना। लैव्य व्यवस्था 25:9-11।
लैव्य व्यवस्था के ठीक अगले अध्याय में स्थित वो संदर्भ जो 7 कालों के लिए इसराइल के तितर बितर किए जाने की पहचान करता है, उन पदों में प्रस्तुत किया गया है जो प्रायश्चित के दिन जुबली के नरसिंगे को फूंकने की आज्ञा तक ले जाते हैं।
इसराइल की संतानों से कह और उनसे कह, जब तुम उस देश में पहुँचो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब वो देश यहोवा के लिए विश्राम दिन माने। 6 वर्ष तक तू अपने खेत में बुआई करना, और 6 वर्ष तक तू अपनी दाखलता की छंटाई करना, और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष देश के लिए पूर्ण विश्राम का विश्राम दिन होगा, यहोवा के लिए विश्राम दिन। तू न अपने खेत में बुआई करना और न अपनी दाखलता की छंटाई करना, तेरी कटनी में से जो आप ही उग आए उसे न काटना, और अपनी अनछंटी दाखलता के अंगूर न बटोरना, क्योंकि ये देश के लिए विश्राम का वर्ष है, और देश का ये विश्राम तुम्हारे लिए भोजन ठहरेगा, तेरे लिए और तेरे दास के लिए और तेरी दासी के लिए और तेरे मजदूर के लिए और तेरे यहाँ परदेशी होकर रहने वाले के लिए और तेरे पशुओं के लिए और उस देश में रहने वाले वन पशुओं के लिए भी। उसकी सारी उपज भोजन ठहरेगी, और तू अपने लिए वर्षों के 7 विश्राम दिन गिनना, अर्थात 7 बार 7 वर्ष, और वर्षों के उन 7 विश्राम दिनों का समय तेरे लिए 49 वर्ष होगा। लैव्य व्यवस्था 25:2।
जब मिलर ने अध्याय 26 में भूमि के लिए ठहराए गए सप्त विश्राम को भंग करने के कारण इसराइल पर आए न्याय को पहचाना, तब उसने इस सिद्धांत को लागू किया कि एक दिन एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, और ये खोजा कि एक वर्ष 360 दिनों का होता है, और 7 × 360 वाचा को तोड़ने के लिए दंड के रूप में 2520 वर्ष हुए। यही वो पहली भविष्यद्वाणी संबंधी सच्चाई थी जिसे उसने खोजा। ये उन सच्चाइयों की नींव है जो उस नींव का भाग बनी जिसे मसीह ने मिलर के कार्य के द्वारा रखा। जुबली की तुरही छुटकारे और स्वतंत्रता की घोषणा है।
7वीं तुरही तीसरे हाय का इस्लाम है।
परंतु 7वें स्वर्गदूत के शब्द के दिनों में जब वो तुरही फूकना आरंभ करेगा, तब परमेश्वर का भेद पूरा हो जाएगा, जैसा उसने अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं को घोषित किया है। प्रकाशित वाक्य 10:7।
इस्लाम की 7वीं तुरही एक बाह्य भविष्यद्वाणी संबंधी सत्य है, और जुबली की तुरही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की आंतरिक भविष्यद्वाणी संबंधी सच्चाई है। पाप से छुटकारा, जो सिस्टर व्हाइट के अनुसार वास्तव में तीसरा स्वर्गदूत है, उस अवधि में जब 7वीं तुरही फूंकी जा रही होती है, मसीह तुम में महिमा की आशा का भेद पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि मसीह अपनी दिव्यता को 144,000 की मनुष्यता के साथ संयुक्त करता है। जो उस समय परमेश्वर की मुहर प्राप्त करेंगे, वे चेतावनी का एक तुरही संदेश घोषित करेंगे, जिसे तीसरे हाय के रूप में तथा तीसरे स्वर्गदूत की चेतावनी के रूप में भी निरूपित किया गया है। तीसरा हाय तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान करता है, जब वो स्वर्गदूत, जो स्वयं यीशु मसीह से कम कोई व्यक्तित्व नहीं है, अपने हाथ में एक संदेश लेकर उतरता है।
जब हम ये पहचानते हैं कि प्रथम और द्वितीय हाय की एक समय भविष्यवाणी ने पहले स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान किया, और तृतीय हाय की एक भविष्यवाणी तृतीय स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान करती है, तब हम तुरहियों की पहचान उन न्यायिक दंडों के रूप में कर रहे होते हैं जो रविवार पालन के प्रवर्तन के प्रत्युत्तर में रोम पर लाए गए थे। वे दैवी विधान द्वारा लाए गए न्यायिक दंड, विशेषकर अंतिम 3 हाय तुरहियां, प्रकाशित वाक्य 14:3 स्वर्ग दूतों की चेतावनी संदेश के साथ संगत हैं और उसके समानांतर चलते हैं। मिलरवादी इतिहास में 2 हाय और 2 स्वर्गदूत तथा 144,000 के इतिहास में तृतीय हाय और तृतीय स्वर्गदूत,
प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के आरंभिक इतिहास में न्याय के आरंभ के संदेश को प्रथम और द्वितीय हाय के इस्लाम की एक परिपूर्ति द्वारा सामर्थ्य प्रदान किया गया। तृतीय स्वर्गदूत के अंतिम इतिहास में न्याय के समापन की घोषणा करने वाले संदेश को तृतीय हाय के इस्लाम की एक परिपूर्ति द्वारा सामर्थ्य प्रदान किया गया।
आरंभ और अंत में जो सामर्थ्य प्रदान की गई थी उसका प्रतीक प्रकाशित वाक्य 10 और 18 के उस स्वर्गदूत द्वारा किया गया था जो स्वयं यीशु मसीह से कम कोई व्यक्तित्व न था। इस्लाम का बाह्य संदेश और न्याय का आंतरिक संदेश बाह्य रूप में तीसरी हाय की तुरही है और न्याय का आंतरिक संदेश तीसरे स्वर्गदूत की तुरही है। इस्लाम की बाह्य तुरही 2520 वर्षों की भविष्यवाणी है और तीसरे स्वर्गदूत की आंतरिक तुरही 2300 वर्षों की है। दोनों मृतकों के न्याय के आरंभ पर पहुंची और बज उठी और दोनों फिर से जीवितों के न्याय के आरंभ पर भी पहुंची।
प्रकाशित वाक्य 10 का स्वर्गदूत 11 अगस्त 1840 को इस्लाम की भविष्यवाणी की पूर्ति में उतरा और ऐसा करते हुए उस स्वर्गदूत ने इस्लाम की एक भविष्यवाणी की पूर्ति के साथ प्रकाशित वाक्य 18 के स्वर्गदूत के अवतरण का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। 321 में संडे लॉ के विद्रोह पर और फिर 528 में परमेश्वर का न्याय पहली 6 तुरहियों के द्वारा निरूपित किया गया है और शीघ्र आने वाले संडे लॉ विद्रोह के लिए उसका न्याय 7वीं तुरही के द्वारा निरूपित किया गया है जो तीसरा हाय है और साथ ही तीसरा स्वर्गदूत भी है। 22 अक्टूबर 1844 को न्याय के आरंभ की चेतावनी का संदेश और 9-11 को जीवितों के न्याय की चेतावनी का संदेश दोनों ही उस क्रम में 7वें स्वर्गदूत के द्वारा सामर्थ्य प्रदान किए गए थे जिसे जोन्स ने प्रस्तुत किया। 8वें और 9वें अध्यायों में 6 तुरही दूत है, फिर 10वें अध्याय में वो स्वर्गदूत उतरता है जो यीशु मसीह से कम किसी व्यक्तित्व का नहीं है। वो स्वर्गदूतों के क्रम में 7वां है जिसके पश्चात 11वें अध्याय में तीसरा हाय आता है जो 7वीं तुरही है जिसका बजना 1844 में आरंभ हुआ, परंतु वो स्वर्गदूतों की उस श्रृंखला में 8वां है जो प्रकाशित वाक्य 14 के 9वें, 10वें और 11वें स्वर्गदूतों तक ले जाती है।
तीसरे स्वर्गदूत का संदेश पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों से पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु इसे धर्म त्याग पर परमेश्वर के न्याय की 7 तुरहियों से भी अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय में न्याय की पहली 4 तुरहियां 321 में कॉन्स्टेंटीन के प्रथम रविवार विधि के पश्चात पश्चिमी रोम के क्रमिक पतन की पहचान कराती हैं और उनका आरंभ 330 में उसके द्वारा साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में विभाजन से हुआ।
जब हमारा राष्ट्र अपनी विधायी परिषदों में मनुष्यों के विवेक को उनके धार्मिक अधिकारों के संबंध में बांधने के लिए ऐसे कानून बनाएगा, रविवार पालन को लागू करेगा और 7वें दिन के सब्त को मानने वालों के विरुद्ध दमनकारी शक्ति का प्रयोग करेगा, तब परमेश्वर की व्यवस्था हमारे देश में वस्तुतः और प्रभाव की दृष्टि से शून्य कर दी जाएगी और राष्ट्रीय धर्म त्याग के पश्चात राष्ट्रीय विनाश आएगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, December 18, 1888।
राष्ट्रीय धर्म त्याग से राष्ट्रीय विनाश आने का सिद्धांत कॉन्स्टेंटाइन के राष्ट्र पर उन प्रथम 4 तुरहियों के साथ लागू हुआ जिन्होंने 476 तक पश्चिमी रोम का समापन कर दिया। पूर्वी रोम 1353 में अपने निष्कर्ष पर पहुंचा, यद्यपि भविष्यवाणी की दृष्टि से उसने 27 जुलाई 1399 को ही अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता खो दी थी। बाबुल के विपरीत, जो एक ही रात में पराजित कर दिया गया था, रोम पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्रमिक रूप से अपने अंत तक पहुंचाया गया। 476 तक प्रथम 4 तुरहियों के अधीन पश्चिमी रोम का पतन 4 तुरहियों के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका के पतन का प्रतिनिधित्व करता है जो एक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की उन 4 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका आरंभ 1798 में हुआ और जो रविवार विधि पर समाप्त होती हैं। वे 4 पीढ़ियां एडवेंटिज्म की 4 पीढ़ियों के समांतर हैं जो प्रकाशित वाक्य 2 की प्रथम 4 कलीसियाओं के समांतर हैं और यहेजकेल अध्याय 8 की क्रमशः बढ़ती हुई 4 घृणित बातों तथा योएल की पुस्तक में टिड्डियों की 4 लहरों के भी समांतर है।
क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, जब मैं यरूशलेम पर अपने 4 भयंकर न्याय
अर्थात तलवार और अकाल और दुष्ट हिंसक पशु और महामारी भेजूंगा, ताकि उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश कर दूं, तब वो कितना अधिक होगा। यहेजकेल 14:16।
पांचवी और छठी तुरहियों ने पूर्वी रोम को गिरा दिया और पश्चिमी रोम के साथ अपनी भविष्यद्वाणीगत संबंधता में पूर्वी रोम राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी रोम कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी रोम संयुक्त राज्य अमेरिका का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो पहले पराजित किया जाता है, जैसा कि पश्चिमी रोम हुआ था।
जब अमेरिका, जो धार्मिक स्वतंत्रता का देश है, अंतरात्मा पर बल प्रयोग करने और मनुष्यों को झूठे सप्त का आदर करने के लिए बाध्य करने में पोपसत्ता के साथ एक हो जाएगा, तब समस्त पृथ्वी के प्रत्येक देश के लोग उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 6:18।
पहली चार तुरहियां अमेरिकी इतिहास की चार पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और जब संयुक्त राज्य गिरता है, तब दानियल 11:41 पद का महिमामय देश अभी अभी गिरा होता है, और अगली बाधा मिस्र है, जो संसार की शेष जातियों का प्रतीक है। तब संयुक्त राष्ट्र, जो 10 राजा हैं, प्रकाशित वाक्य 17 में थोड़े समय 1 घंटे के लिए अपना 7वां राज्य पोप सत्ता को देने पर सहमत होते हैं। ये हेरोदेस के जन्मदिन के भोज में घटित होता है, जब वो अपने राज्य का आधा भाग देने की प्रतिज्ञा करता है। हेरोदेस के जन्मदिन के भोज में उसी घड़ी दीवारों के पलस्तर पर लिखा हुआ प्रकट होता है और बेलशस्सर मार डाला जाता है। वो घड़ी रविवार विधि के समय आती है और मनुष्य की कृपाकाल की समाप्ति तक बनी रहती है। 7वें राज्य पर वैसा ही विजय प्राप्त की जाती है जैसा 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के ध्वंस द्वारा प्रतिरूपित हुआ था। संयुक्त राज्य में रविवार विधि से, जैसा कि 1448 द्वारा प्रतिरूपित है, लेकर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन तक 4 प्रतीकात्मक वर्ष होते हैं। पोप सत्ता ने 798 में अपना घातक घाव प्राप्त किया।
दानियल 11:16 में पोप तंत्र N199 में, अर्थात अंत के समय, गिर पड़ा। फिर दक्षिण का राजा 1999 में, अर्थात अंत के समय, गिर पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका पद 41 में गिरता है और मिस्र पद 42 में गिरता है और पोप तंत्र पद 45 में अपने दूसरे और अंतिम पतन को पहुंचता है।
दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में जिस प्रकार राष्ट्रों के उत्थान और पतन को स्पष्ट किया गया है, उससे हमें ये सीखना चाहिए कि केवल बाहरी और सांसारिक वैभव कितना निरर्थक है। बाबुल अपने समस्त सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ, जिसके समान हमारे संसार ने फिर कभी नहीं देखा, वो सामर्थ्य और ऐश्वर्य जो उस समय के लोगों को इतना स्थिर और स्थायी प्रतीत होता था, कैसे पूर्णतः लुप्त हो गया। घास के फूल के समान वो नष्ट हो गया। याकूब 1:16। इसी प्रकार मादी फारसी राज्य और यूनान तथा रोम के राज्य भी नष्ट हो गए, और इसी प्रकार वो सब कुछ नष्ट हो जाता है जिसका आधार परमेश्वर नहीं है। केवल वही स्थिर रह सकता है जो उसके उद्देश्य से बंधा हुआ हो और उसके चरित्र को प्रकट करता हो। उसकी सिद्धांत ही एकमात्र अटल वस्तुएं हैं जिन्हें हमारा संसार जानता है। भविष्यद्वक्ता और राजा 548।
41वें पद में संयुक्त राज्य अमेरिका झूठा भविष्यद्वक्ता का पतन 1479 द्वारा प्रतिरूपित किया गया था, और 42वें पद में मिस्र अजगर का पतन 1753 द्वारा प्रतिरूपित किया गया था, और 1779 द्वारा प्रतिरूपित के अनुसार पोप सत्ता पशु बिना किसी सहायक के अपने अंत को पहुंचती है। झूठा भविष्यद्वक्ता और अजगर तुरही शक्तियों द्वारा गिराए जाते हैं और पशु को एक अजगर शक्ति द्वारा गिराया जाता है।
संख्या 4 किसी राज्य के विघटन का प्रतीक है। सिकंदर का राज्य टूटकर 4 राज्यों में बिखर गया और मिस्र 4थी पीढ़ी में लाल समुद्र में डूब गया, और इसराइल यहेजकेल 8 की 4थी घृणित बात में सूर्य को प्रणाम कर रहा है। पृथ्वी के उस पशु में प्रोटेस्टेंट वाद और रिपब्लिकन वाद की 4 पीढ़ियां 1798 में आरंभ हुई और दोनों सींगों के लिए शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर समाप्त होती हैं। यहेजकेल के यरूशलेम पर 4 घोर दंड संयुक्त राज्य अमेरिका पर आने वाले 4 दंडों को चित्रित करते हैं, और बाइबल की भविष्यवाणी के 6ठे राज्य पर वे 4 दंड 1439 से 1453 तक के उन 4 वर्षों का प्रतिरूप है, जब बाइबल की भविष्यवाणी का 7वां राज्य
पोप सत्ता को अपनी आधी राज्य सत्ता देने के लिए सहमत होता है, उस कलीसिया और राज्य संबंध में जिस पर सूर की वेश्या राज्य करती है।
54:92 से 53:53 तक के 4 वर्ष रविवार विधि के समय सातवें राज्य के पतन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे रविवार विधि से लेकर अनुग्रह अवधि के समाप्त होने तक 8वें राज्य के पतन की अवधि का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मिस्र की विजय जो संसार है और वो अजगर भी है जो पोप सत्ता को दिया गया है 54:54 से 53:53 तक के 4 वर्षों द्वारा प्रतीकित अवधि के आरंभ में एक फ्रैक्टल है। ये रविवार विधि के समय कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन की पहचान कराता है और फिर पुनः तब जब मीकाएल खड़ा होता है तब प्रेरित वचन के अनुसार चारों स्वर्गदूत पूर्णतः मुक्त कर दिए जाते हैं।
मैंने देखा कि वे 4 स्वर्गदूत चारों वायुओं को तब तक रोके रखेंगे जब तक पवित्र स्थान में यीशु का कार्य पूरा न हो जाए और तब अंतिम 7 विपत्तियां आएंगी। अर्ली राइटिंग्स 36।
सिकंदर के राज्य के 4 भाग, पश्चिमी रोम पर 4 तुरहियां, पूर्वी रोम पर छोड़ी गई 4 वायु, यरूशलेम पर 4 घोर दंड, और जब पोपतंत्र अपने अंत को पहुंचता है और सहायता करने वाला कोई नहीं होता, तब छोड़ी गई 4 वायु। इन भविष्यद्वाणी संबंधी प्रतीकों को प्रस्तुत कर हम दूसरे हाय पर विचार करेंगे, उसे शीघ्र आने वाले रविवार के विधि नियम के संदर्भ में लागू करते हुए।
फ्लोरेंस की परिषद
1429 में फ्लोरेंस की परिषद, जिसे फ्लोरेंस का संघ भी कहा जाता है, में पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया के प्रतिनिधियों ने, जिनका नेतृत्व बीजेंटाइन सम्राट जॉन अष्टम पलायोलोगोस और कॉन्स्टेंटिनोपल के पितृसत्ताध्यक्ष कर रहे थे, रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ संघ का एक औपचारिक अधिनियम हस्ताक्षरित किया। उन्होंने रोम के पोप को समस्त कलीसिया का प्रधान सर्वोच्च प्राधिकारी मानने पर सहमति व्यक्त की।
क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और वही देह का उद्धार करता है। इफिसियों 5:23।
मीकियाई धर्म स्वीकारोक्ति।
सम्राट और पितृपुरोहित ने नाइसिन पंथ वचन में फिलियोक्वे उपवाक्य को स्वीकार किया, जो नाइसिन पंथ वचन में एक जोड़ा गया परिशिष्ट था और जिसके अनुसार पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से प्रवाहित होता है। नाइसिन पंथ वचन कैथोलिक विश्वास के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रयुक्त घोषणाओं में से एक है। नाइसिन पंथ वचन कैथोलिक विश्वास की मूल मान्यताओं का एक औपचारिक सार है। इसे मूल रूप से इस सत्य की रक्षा के लिए लिखा गया था कि यीशु मसीह कौन है। सन 322 में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि एरियस नामक एक याजक ने ये शिक्षा दी कि यीशु परमेश्वर पिता द्वारा सृजित किए गए थे और पूर्णतः परमेश्वर नहीं थे।
सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इस विषय का निपटारा करने के लिए नाइसिया की प्रथम महासभा बुलाई।
उस महासभा ने दृढ़तापूर्वक ये प्रतिपादित किया कि यीशु पूर्णतः परमेश्वर हैं और पिता के उसी तत्व के हैं। बाद में सन 381 में कॉन्स्टेंटिनोपल की महासभा में इस विश्वास पत्र का विस्तार किया गया। इस बिंदु पर ये ध्यान देने योग्य है कि नाइसियाई विश्वास पत्र कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के इतिहास में स्थापित किया गया था और ये अंतिम कॉन्स्टेंटाइन के लिए भी एक विषय होने वाला था, जो कॉन्स्टेंटाइन एकादश था और जो पूर्वी बीजांटिन साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। महान कॉन्स्टेंटाइन, जो प्रथम था, बाइबल की भविष्यवाणी में बार बार एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो पूर्वी साम्राज्य के आरंभ में शासक है और इसलिए पूर्वी साम्राज्य के अंत में होने वाले शासक का प्रतिरूप ठहरता है। ये तथ्य कि नाइसियाई विश्वास पत्र आरंभिक और अंतिम दोनों इतिहासों का एक तत्व है, भविष्यवाणी के विद्यार्थी द्वारा अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए, यदि वो अल्फा और ओमेगा के सिद्धांत को समझता है।
351 में नाइसिन पंथ विधान को परगेट्री के सिद्धांत तथा यूख्रिस्ट के सिद्धांत के साथ अद्यतन किया गया। साथ ही यूख्रिस्ट के लिए बिना खमीर की रोटी के उपयोग को स्वीकार किया गया, जो एक लैटिन प्रथा थी। 351 के इस पंथ विधान ने मूल पाप और परलोक के विषय में कैथोलिक समझ को भी स्वीकार किया। इसका समापन इस प्रमुख पंक्ति के साथ हुआ, हम ये भी परिभाषित करते हैं कि पवित्र प्रेरितिक आसन और रोमी परमधर्माध्यक्ष समस्त संसार पर प्रधानता रखता है और मसीह का सच्चा प्रतिनिधि है। फ्लोरेंस की महासभा में 6 जुलाई 1043 को एक और अद्यतन संस्करण पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1353 में ओटोमन तुर्कों के हाथों कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन से 14 वर्ष पूर्व था। ये संघ भारी राजनीतिक दबाव के अधीन हस्ताक्षरित किया गया था। बीजांटीन साम्राज्य आगे बढ़ते हुए ओटोमनों के विरुद्ध पश्चिम से सैन्य सहायता पाने के लिए अत्यंत व्याकुल था। जब यूनानी प्रतिनिधि अपने घर लौटे, तब पूर्व में अधिकांश पादरियों, भिक्षुओं और सामान्य लोगों द्वारा इस समझौते का प्रबल विरोध किया गया। जिन अधिकांश बिशपों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने बाद में अपना समर्थन वापस ले लिया। ये संघ कभी पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया और आगामी वर्षों में पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया द्वारा औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। 1043 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन तक ये संघ पहले ही व्यावहारिक रूप से विघटित हो चुका था। इतिहासकार प्रायः इसका वर्णन एक ऐसे राजनीतिक संघ के रूप में करते हैं जो गहरे धर्मशास्त्रीय, सांस्कृतिक और जन आधारित प्रतिरोध के कारण विफल हो गया।
325 ईस्वी की नाइसिया की प्रथम महासभा में नाइसियन धर्म सिद्धांत को अपनाया गया। ये 303 ईस्वी से 5 वर्ष पहले का चिन्ह है, जब दानियल 11:31-24 के 306 वर्ष, जिन्हें एक समय के रूप में निरूपित किया गया है, समाप्त हुए।
वो शांतिपूर्वक प्रांत के सबसे उपजाऊ स्थानों में भी प्रवेश करेगा और वो कार्य करेगा जो न उसके पितरों ने किया और न उसके पितरों के पितरों ने। वो उनके बीच लूट, माल और धन बिखेर देगा, वरन वो कुछ समय तक गढ़ों के विरुद्ध अपनी युक्तियां रचेगा। दानियल 11:24।
ईसा पूर्व 31वां वर्ष और 303, दोनों ही दानियल 11 के 27वें और 29वें पदों के नियत समय को चिह्नित करते हैं।
और उन दोनों राजाओं के मन अनिष्ट करने पर लगे रहेंगे और वे एक ही मेज पर बैठकर झूठ बोलेंगे, परंतु वो सफल न होगा, क्योंकि अंत अभी भी नियत समय पर ही होगा। नियत समय पर वो लौटेगा और दक्षिण की ओर आएगा, परंतु इस बार वैसा न होगा जैसा पहले हुआ था और न वैसा जैसा बाद में होगा। दानियल 11:27-29।
पूर्वी रोम की भविष्य सूचक रेखा का आरंभ 313 और अंत 1449-1145 प्रथम और अंतिम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा निरूपित होता है। पूर्वी रोम की भविष्य सूचक रेखा का अल्फा और ओमेगा, जिसे बीजांटीन साम्राज्य कहा जाता है, 360 वर्षों वाले साम्राज्यवादी रोम के अंत से संबद्ध है, जिसने 31 ईसा पूर्व में एक्टियम के युद्ध से लेकर 303 ईस्वी तक और फिर आगे 1045 तक सर्वोच्च रूप से शासन किया। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम के युद्ध से पहले मार्क एंटनी और ऑगस्टस सीजर ने एक ही मेज पर असत्य बातें कहीं जो सफल न हुईं। 303 ईस्वी से पहले 332 में नाइसियन पंथ स्वीकार को अंगीकृत किया गया। 1045 से पहले उसी नाइसियन पंथ स्वीकार के अद्यतन रूप को अंगीकृत किया गया। 31 ईसा पूर्व से पहले दो राजनीतिक व्यक्तियों ने एक ही मेज पर असत्य कहा था। 332 में आत्मिक असत्य एक ही मेज पर कहा गया। वे दो साक्षी उन राजनीतिक और आत्मिक असत्यों की पहचान कराते हैं जिन्हें 1449 में फ्लोरेंस की परिषद में अंगीकृत किया गया। उस अद्यतन नाइसियन पंथ स्वीकार को डिक्री ऑफ यूनियन कहा गया। एक ही मेज पर झूठ का पहला मार्ग चिन्ह 31 ईसा पूर्व से पहले आया और वो मूर्ति पूजक रोम के दो राजनीतिक गुटों के बीच था। उन झूठों के लिए नियुक्त समय 31 ईसा पूर्व था और उसमें अगस्तुस सम्मिलित था, जो मिस्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पुरुष और एक स्त्री के महासंघ के विरुद्ध रोम का प्रतीक था। झूठों का दूसरा समूह 322 में था और नियुक्त समय 330 था। झूठों का तीसरा समूह 1439 में था और नियुक्त समय 1439-1439 में मेज पर बैठे हुए जन पश्चिमी और पूर्वी रोम का प्रतिनिधित्व करते थे, जहां पूर्वी रोम एक धार्मिक तर्क से सहमत होकर एक राजनीतिक लक्ष्य की खोज कर रहा था। 31 ईसा पूर्व, उसके बाद 303 और फिर 1453 रोम की रेखा के त्रिविध अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मार्क एंटनी और क्लियोपात्रा के गठबंधन का राजनीतिक संकट 325 में एरियनवाद के विधर्म के आध्यात्मिक संकट का पूर्व रूप था और वो आगे चलकर 1439 में इस्लामी तुर्कों के राजनीतिक
तथा धार्मिक संकट का पूर्व रूप बना।
नाइसिन धर्म सिद्धांत की शिक्षाएं असत्य हैं और उनमें सत्य का कोई अंश नहीं है।
6 जुलाई 1439 को फ्लोरेंस की परिषद में जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए उसे डिक्री ऑफ यूनियन कहा गया और वो उन्हीं असत्यों तथा उनसे भी अधिक का प्रतिनिधित्व करता था। जब 1439 में प्रतिनिधि कॉन्स्टेंटिनोपल लौटे तो उनका सामना क्रोध और विश्वासघात के आरोपों से हुआ। ये कहावत चारों ओर फैल गई, पोप के माइटर से तुर्की पगड़ी बेहतर है।
संघ पर मुख्यतः इसलिए हस्ताक्षर किए गए क्योंकि बीजांटीन सम्राट को ओटोमानों के विरुद्ध पश्चिमी सैन्य सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी। जब ये स्पष्ट हो गया कि बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं सैन्य सहायता आने वाली थी तो उस संघ के लिए समर्थन समाप्त हो गया। 4550.45(1) में कई पूर्वी धर्मसभाओं ने उस संघ को अस्वीकार कर दिया और 4553 में कॉन्स्टांटिनोपल के पतन के बाद उस संघ को पूर्णतः त्याग दिया गया। फ्लोरेंस के संघ आदेश का अंतिम परिणाम पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया द्वारा एक विफल और अस्वीकृत परिषद के रूप में माना जाता है। इसे वैध नहीं माना जाता, तथापि रोमन कैथोलिक कलीसिया अभी भी इसे एक वैध सार्वभौमिक परिषद मानती है।
हम ये समझने के लिए तर्क क्रम स्थापित कर रहे हैं कि दूसरे हाय के भविष्यद्वाणी संबंधी लक्षण तीसरे हाय के इतिहास में किस प्रकार पुनरावृत होते हैं। पहले हाय की 150 वर्ष की भविष्यवाणी 27 जुलाई 1299 को आरंभ हुई और 27 जुलाई 1449 को समाप्त हुई।
पौधा लाख 79
कॉन्स्टेंटिन 11 पलायोलोगोस का जन्म
1304 में हुआ और उसने जनवरी 1304 अनवानी से 29 मई 1353 तक शासन किया। वो पूर्वी रोमन बीजेंटाइन साम्राज्य का अंतिम सम्राट था जो 1000 से अधिक वर्षों तक बना रहा था। 1353 में उस्मानी घेराबंदी के दौरान उसने लगभग 7000 से 8000 रक्षकों के साथ मेहमेद द्वितीय की 80000 से अधिक की सेना के विरुद्ध कॉन्स्टेंटिनोपल की रक्षा का साहसपूर्वक नेतृत्व किया। 29 मई 1353 को जब कॉन्स्टेंटिनोपल अंततः पतित हो गया, वो नगर प्राचीरों पर युद्ध करते हुए मारा गया। उसके शरीर की कभी निर्णायक रूप से पहचान नहीं हो सकी। उसकी मृत्यु ने रोमन साम्राज्य का अंत चिह्नित किया, उस साम्राज्य की अंतिम प्रत्यक्ष निरंतरता का, जिसकी स्थापना 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने की थी।
उसे यूनानी इतिहास और रूढ़िवादी परंपरा में एक वीरतापूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्मरण किया जाता है। किंवदंती में उसे प्रायः संगममरमर का सम्राट कहा जाता है, यह विश्वास कि वो एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल को बचाने के लिए लौटेगा।
जॉन अष्टम पलायोलोगोस 1392 रेन्नावेविस 1068 अंतिम से पूर्ववर्ती बाइजेंटाइन सम्राट थे जिन्होंने 1225-1268 तक शासन किया। वे सम्राट मैनुअल द्वितीय पलायोलोग्स के ज्येष्ठ पुत्र और कॉन्स्टेंटाइन एकादश के बड़े भाई थे। जॉन अष्टम ने अपने शासनकाल का अधिकांश भाग ओटोमानों से मरणासन बाइजेंटाइन साम्राज्य को बचाने के लिए व्याकुल प्रयास करते हुए बिताया। 1329 में वे स्वयं इटली गए और फ्लोरेंस की परिषद की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स प्रतिनिधिमंडल ने अस्थायी रूप से रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ पुनः एक होने तथा पोप को कलीसिया के प्रधान के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। कॉन्स्टेंटाइन महान ने भी नाइसिया की परिषद की अध्यक्षता की थी। जॉन अष्टम ने अपने शासनकाल का अधिकांश भाग ओटोमानों से मरणासन बाइजेंटाइन साम्राज्य को बचाने के लिए गुरप्रसाद के विकल्पों से जोड़ रहे थे।
जब 1448 में जॉन अष्टम की मृत्यु हुई, तब उसके भाई कॉन्स्टेंटाइन एकादश को उत्तराधिकारी चुना गया। 1448 तक बाइजेंटीन साम्राज्य एक अत्यंत छोटा आश्रित राज्य रह गया था और कॉन्स्टेंटिनोपल के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इस पर उस्मानियों का पर्याप्त प्रभाव था। 27 जुलाई 1419 को बाइजेंटीन साम्राज्य के अंतिम वर्षों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी। बाइजेंटीन सम्राट जॉन अष्टम पलायोलोगोस की मृत्यु 1448 में ही पहले हो चुकी थी। उसके भाई कॉन्स्टेंटाइन एकादश पलायोलोगोस अंतिम सम्राट को कॉन्स्टेंटिनोपल में सम्राट घोषित किया गया। तथापि कॉन्स्टेंटाइन एकादश के औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ होने से पहले उसने उस्मानी सुल्तान मुराद द्वितीय के पास राजदूत भेजे और शासन करने की अनुमति मांगी। सुल्तान ने वो अनुमति प्रदान की और तभी कॉन्स्टेंटाइन एकादश को औपचारिक रूप से राज्याभिषिक्त किया गया और सम्राट के रूप में मान्यता दी गई। इस कृत्य को बाइजेंटीन स्वतंत्रता के स्वैच्छिक समर्पण के रूप में देखा गया। पहली बार किसी बाइजेंटीन सम्राट ने खुले रूप से स्वीकार किया कि वो केवल उस्मानी तुर्कों की अनुमति से ही शासन करता है। केवल चार वर्ष बाद 1553 में कॉन्स्टेंटिनोपल उस्मानियों के हाथों गिर गया।
27 जुलाई 1479 के पश्चात 391 वर्ष और 15 दिन बाद 11 अगस्त 1840 को तुर्कों ने चार महान यूरोपीय शक्तियों के अधीन होकर मिस्र से संरक्षण मांगा। इस प्रकार उन्होंने एक घड़ी, एक दिन, एक महीने और एक वर्ष की भविष्यद्वाणी को पूरा किया। अब हम उस तर्क को स्थापित कर चुके हैं जिसके द्वारा आसन संडे लॉ पर पहली और दूसरी विपत्ति को लागू किया जाए। 144,000 के प्रतीक के रूप में पतरस तीसरे स्वर्गदूत की गति का प्रतिनिधित्व करता है और विलियम मिलर पहले और दूसरे स्वर्गदूतों की गति का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों गतियां कुंजियों के साथ संबद्ध हैं।
और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, वो खोलेगा और कोई बंद न करेगा, और वो बंद करेगा और कोई न खोलेगा। यशाया 22:2।
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है,
और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। मत्ती 16:18-19।
हम अगले लेख में नीनवे की लड़ाई पर उस कुंजी के रूप में विचार करेंगे जो न केवल अथाह गड्ढे को खोलती है बल्कि उस भविष्यद्वाणी संबंधी कुंजी के रूप में भी जो दानियल 11 की संपूर्ण साक्ष्य श्रृंखला को सिद्ध क्रम में स्थापित करती है। मिलर के स्वप्न में संदूकची से लगी हुई कुंजी मिलर की बाइबल अध्ययन की पद्धति थी। मिलरवादी इतिहास के प्रमाण पाठों का प्रयोग तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास में पंक्ति पर पंक्ति के साथ संयुक्त होकर वो कुंजी है जो प्रकाशित वाक्य 9 की कुंजी को पद 40 के बाहरी संदेश के गुप्त इतिहास को खोलने और उसे क्रम में स्थापित करने योग्य बनाती है।
हम अगले लेख में अपने विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगे।
नबी के लिए पहिए के भीतर पहिया तथा उनसे संबद्ध जीवित प्राणियों के दर्शन सब कुछ जटिल और अव्याख्याय प्रतीत हुए, परंतु पहियों के बीच अनंत बुद्धि का हाथ दिखाई देता है और उसके कार्य का परिणाम पूर्ण व्यवस्था होता है। प्रत्येक पहिया प्रत्येक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करता है। टेस्टिमोनीज टू मिनिस्टर्स 214।